नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, तीन नए आपराधिक कानून देश में अत्याधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से सुझाव मांगे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आधिकारिक तौर पर अभियोजन से छूट है, व्यक्तिगत तौर पर नहीं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, असम और मेघालय में आज अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और जॉर्डन में अंडर 23 एशियाई पुरुष कुश्ती चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तीन आपराधिक कानून देश में आधुनिक न्याय प्रणाली का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली अब पूरी तरह से स्वदेशी है और आजादी के बाद भारतीय लोकाचार में अंतर्निहित है। श्री शाह कल नई दिल्ली में तीन आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नए कानून त्वरित न्याय और पीड़ितों के अधिकार सुनिश्चित करेंगे। गृहमंत्री ने कहा कि इससे पहले केवल पुलिस के अधिकारों की रक्षा की जाती थी, लेकिन अब पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के अधिकारों की भी रक्षा होगी। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश विरोधी गतिविधि के खिलाफ नए प्रावधानों के साथ राजद्रोह कानून को समाप्त कर दिया है।
राजद्रोह एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा।
गृहमंत्री ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अब 20 वर्ष की कैद या आजीवन कारावास की सजा होगी। उन्होंने कहा कि नाबालिग से दुष्कर्म के लिए मौत की सजा दी जाएगी। श्री शाह ने बताया कि नए कानूनों में पीड़िता के बयान, उसके घर पर महिला अधिकारियों और उसके अपने परिवार की उपस्थिति में दर्ज कराने का भी प्रावधान है। श्री शाह ने बताया कि नए कानूनों में भीड़ की हिंसा के विरूद्ध भी प्रावधान है।
सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है, इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है।
तेलंगाना में नई भारतीय न्याय संहिता के तहत कल राज्य की पहली प्राथमिकी दर्ज की गई। ये कानून भारतीय दंड संहिता के स्थान पर लागू किया गया है। ये प्राथमिकी हैदराबाद के चार मीनार पुलिस थाने में दर्ज की गई। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कल धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के अनुराग सिंह ठाकुर ने पिछले 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अर्थव्यवस्था में वृद्धि और लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट परीक्षा में अनियमितता, अग्निवीर योजना, मणिपुर में अशांति, नोटबंदी, बढ़ती महंगाई और किसानों के मुद्दे उठाए। श्री गांधी ने अग्निवीर योजना पर कहा कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलता।
अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूँ, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी, मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शहीद अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता।
श्री राहुल गांधी की विशेष समुदाय पर टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आपत्ति की। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुदाय विशेष को हिंसक कहना बहुत गंभीर मामला है। गृहमंत्री ने आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी की मांग की। बाद में राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान किसी विशेष समुदाय के विरूद्ध नहीं था, बल्कि उनका इशारा सत्ता पक्ष की ओर था। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक विशेष समुदाय के खिलाफ दिए गए बयान पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि श्री गांधी ने सदन में गैर जिम्मेदार बयान दिया है।
संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा, असत्यवादी कहा। श्री राहुल गांधी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद की गरिमा को इतना नीचा किया है, इतना कमजोर किया है और राजनीति को एक ऐसे लेवल पे लेके गए हैं जो कि निंदनीय है। संपूर्ण देश श्री राहुल गांधी के इस बयान से दुखी है और इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA में मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से परीक्षा प्रक्रिया और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की संरचना और कार्यप्रणाली पर सुझाव और विचार मांगे हैं। ये सुझाव 7 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार माना है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा कार्यालय में लिए गए कुछ फैसलों में अभियोजन से छूट होती है। ये फैसला तब आया है जब अमेरिका की शीर्ष अदालत ने आपराधिक आरोपों से खुद को बचाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप के 2020 के चुनाव में हार को पलटने का प्रयास शामिल था। अदालत ने कल 3 के मुकाबले 6 न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि निजी क्षमता के उलट पूर्व राष्ट्रपतियों को अपने संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत लिए गए फैसलों के लिए अभियोजन से छूट होती है। 78 वर्षीय ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाना है और पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति भी हैं जिन्होंने एक अपराध किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए कल एक विशेष अभियान शुरू किया। शिकायतों के निपटारे के लिए 100 दिन की कार्य योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत एक माह का विशेष अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा के साथ बैठक की। बैठक के दौरान देश में कृषि क्षेत्र में तेज विकास के उद्देश्य से मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, भंडारण क्षमता बढ़ाने, असम में बागवानी और कृषि तथा किसान कल्याण सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। श्री चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र और किसानों का हित सर्वोपरि है। केंद्र सरकार उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए असम को पूरा समर्थन देना जारी रखेगी। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, असम और मेघालय में बहुत तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार सहित उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में 3 से 4 दिन तक बहुत तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसी ही स्थिति गुजरात और देश के पश्चिमी हिस्सों में भी रहने के आसार हैं। एक रिपोर्ट।
अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई महीने के दौरान पूरे देश में वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना है। देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली के अनुसार मॉनसून के द्वितीय भाग के दौरान लानीना की स्थिति विकसित होने की संभावना है। अर्पिता चौधरी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इस बीच आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हुई है। शहर में दिन में तेज बारिश के साथ बादल छाये रहने की संभावना है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से 6,537 श्रद्धालुओं का पांचवा दल अमरनाथ दर्शन के लिए रवाना हुआ। ये श्रद्धालु आज सुबह 261 के समूह में आधार शिविर से रवाना हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
तीर्थयात्रियों ने बालतल और पहलगाम चंदनवाड़ी के साथ साथ हेलीकॉप्टरों के माध्यम से भी पवित्र गुफा तक यात्रा की है। इस बीच यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और अधिक से अधिक यात्री प्रतिदिन पवित्र श्री अमरनाथ जी गुफा में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कश्मीर घाटी में प्रवेश कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल।
भारत 23 वर्षीय कम उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रहा। जॉर्डन के अम्मान में भारत के युवा पहलवानों ने फ्री स्टाइल कुश्ती में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कजाकिस्तान दूसरे और किर्गिस्तान तीसरे स्थान पर रहा। पुर्तगाल और फ्रांस यूईएफए फुटबॉल चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने कल रात जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में स्लोवेनिया को पेनल्टी शूटआउट में 3-0 से पराजित किया। दोनों टीमें निर्धारित समय में बराबरी पर थीं, इसलिए मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से करना पड़ा। अन्य क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने बेल्जियम को पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में शनिवार को फ्रांस का सामना पुर्तगाल से होगा। हंगरी ने यूरोपीय संघ की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। हंगरी के यूरोपीय संघ के कार्यमंत्री यानोस बोका ने कल हंगरी की अध्यक्षता के दौरान 7 शीर्ष प्राथमिकताओं का उल्लेख किया। इनमें यूरोपीय संघ की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाना, यूरोपीय रक्षा नीति को सशक्त करना, यूरोपीय संघ का विस्तारीकरण और अवैध प्रवासन को नियंत्रित करना शामिल है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद जुमलेंदु। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तीखी नोकझोंक अखबारों की बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में देंगे जवाब। 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने पर जनसत्ता की सुर्खी है, न्याय प्रणाली में बदलाव की शुरूआत। मामलों में 60 दिन के भीतर तय होंगे आरोप, आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा। नीट यूजी पर पंजाब केसरी की खबर है, रीटेस्ट में किसी को नहीं मिले 720 अंक, एनटीए ने ग्रेस मार्क को लेकर नई संशोधित रैंक जारी की। दैनिक जागरण का कहना है, जून में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,74,000 करोड़ रुपए रहा, अप्रैल से जून की तिमाही में 5,57,000 करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह मिला। वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी से घरेलू सामानों पर कर की दरें घटी। हिंदुस्तान का कहना है, विनिर्माण क्षेत्र में तेज वृद्धि, रोजगार में रिकॉर्ड उछाल, रोजगार सृजन मार्च 2005 के बाद सबसे तेज। हाउ टू मेक मिलियंस बिफोर ग्रैंडमा डाइज फिल्म पर दैनिक भास्कर की विशेष सुर्खी है, दर्शकों को खूब रुला रही थाईलैंड की दादी, भावुक लोगों को सिनेमा घर टिश्यू पेपर तक दे रही हैं। फिल्म का संदेश, परिवार ही सबसे बड़ी विरासत, दिल टूटने के बाद भी हम अपने परिजनों को प्यार करना नहीं छोड़ते।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 3 आपराधिक कानून देश में अत्याधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से सुझाव मांगे। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आधिकारिक तौर पर अभियोजन से छूट है, व्यक्तिगत तौर पर नहीं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, असम और मेघालय में आज अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और जॉर्डन में अंडर 23 एशियाई पुरुष कुश्ती चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।